बीबीसी इंडिया बोल 11 अगस्त शनिवार, मैं हूं आदर्श राठौर। राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा सदस्य हरिवंश को सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो जीते भी। क्या इस घटनाक्रम का मतलब है कि एनडीए के खिलाफ विपक्ष की एकता की हवा निकल गई है? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोआन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका तुर्की के प्रति अपना मौजूदा रवैया जारी रखता है तो तुर्की नए दोस्त और सहयोगी तलाशेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में अर्दोआन ने कहा है कि अमेरिका तुर्की की संप्रभुता का सम्मान करना शुरू नहीं करेगा तो नेटो सहयोगियों के रूप में उनकी साझेदारी खतरे में पड़ जाएगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की से स्टील और एल्युमिनियम आयात पर दोगुने कर दिए थे। राष्ट्रपति ट्रंप तुर्की में गिरफ्तार अमरीकी पादरी एंड्रयू ब्रंसन की रिहाई की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति अर्दोआन ने एक रैली में कहा कि एक पादरी के लिए तुर्की को झुकाना सही नहीं है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा, एक पादरी के लिए तुर्की को झुकाने की कोशिश करना गलत है। मैं एक बार फिर अमरीकी लोगों से आह्वान करता हूं कि यह शर्मनाक है कि आप अपने नेटो सहयोगी देश के ऊपर एक पादरी को चुन रहे हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयिप अर्दोआन के शब्द। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी शहर गजनी में तालिबान और सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई दूसरे दिन भी जारी है। अधिकारियों का कहना है कि शहर सरकारी बलों के नियंत्रण में है, लेकिन तालिबान बाहरी इलाकों से अभी भी हमले कर रहे हैं। प्रांतीय राजधानी गजनी में दुकानें और सरकारी कार्यालय बंद रहे हैं और लड़ाई की वजह से कुछ नागरिक शहर छोड़कर चले गए हैं। अधिकतर संचार संपर्क भी कट गए हैं। काबुल और गजनी के बीच मुख्य सड़क मार्ग को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। गजनी अफगानिस्तान का रणनीतिक रूप से अहम शहर है। कई दक्षिणी प्रांतों के रास्ते यहीं से होकर गुजरते हैं। मिस्र के सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने राजधानी काहिरा के पास स्थित एक चर्च पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने चर्च के बाहर धमाका किया। इस हमलावर को सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया था। मिस्र में चरमपंथी कोप्टिक ईसाई समुदाय को निशाना बनाते रहे हैं। राजधानी काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और अन्य शहरों में हाल के सालों में चर्चों पर हुए हमलों में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। इस्लामिक स्टेट इन हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने सबसे साहसिक अभियानों में से एक के प्रक्षेपण को रविवार तक के लिए टाल दिया है। पार्कर सोलर प्रोब केप कैनेवरल से सूर्य की ओर उड़ने ही वाला था कि हीलियम अलार्म बज उठा और प्रक्षेपण रोक दिया गया। प्रक्षेपण का समय समाप्त होने से पहले समस्या को सुलझाने का कोई और रास्ता नहीं था। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद का कहना है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसे एक व्यापारी से जब्त की गई लग्जरी याट को बेच देगी। प्रधानमंत्री महातिर ने शनिवार को इक्वानिमिटी नाम की इस याट का दौरा करने के बाद कहा कि उन्होंने इससे पहले ऐसी शानदार चीज नहीं देखी है। करीब 1700 करोड़ रुपए कीमत की इस याट पर जिम और हेलीपैड भी हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल स्पेन पहुंची हैं, जहां वो नए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से वार्ता करेंगी। ये अनौपचारिक मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों ने प्रवासियों को लेकर समझौता किया है। इसके तहत जर्मनी स्पेन से आने वाले प्रवासियों को वापस स्पेन भेज सकेगा। जर्मनी को उम्मीद है कि वह इटली और ग्रीस के साथ भी ऐसे ही समझौते कर लेगा। यूरोप पहुंचने वाले अधिकतर प्रवासी यहीं से होकर आते हैं। रोमानिया की पुलिस का कहना है कि शुक्रवार को बुखारेस्ट में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद हमारे साथ हैं। विषय एक बार फिर से बता दें, राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत का मतलब क्या ये समझा जाए कि एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की हवा निकल गई है? इससे पहले कि कार्यक्रम में हम श्रोताओं की टिप्पणियों को शामिल करें, मधुसूदन जी आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत लायक नंबर न होने के बावजूद उसके उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह का उपसभापति चुना जाना, क्या ये दिखाता है कि विपक्ष एकजुट नहीं है?
देखिए, आपने एक शब्द प्रयोग किया कि क्या विपक्ष की हवा निकल गई है, तो मैं हवा निकलना शब्द तो नहीं यूज़ करना चाहूँगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि बहुत बड़ा झटका अपोजिशन को लगा है। जो ऐसे दल थे जो इंडिपेंडेंट माने जाते थे, जिसमें अन्ना द्रमुक आता है, जिसमें आपका ये बीजेडी आता है, और जिसमें टीआरएस वगैरह शामिल थे, इन दलों ने बजाय इसके कि ये एब्स्टेन करते या पहले की तरह खिलाफ वोट देते, इनमें से कुछ लोग, वो खुले आम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिवंश के लिए तैयार हो गए। और इससे बड़ी बात ये हुई कि जो एनडीए में जो उनके एनडीए के घटक दल हैं, उनमें जो एक अविश्वास था बीजेपी को लेकर, वो अविश्वास के बादल भी कुछ छंटने चाहिए, क्योंकि गुजराल साहब ने, जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे हैं, उन्होंने कहा था कि आप जरा विपक्ष के साथ बातचीत में, मतलब घटक दलों के साथ बातचीत में थोड़ा और ज़्यादा गंभीरता बरतिए, इस तरह की बात कही थी। शिवसेना नाराज थी, लेकिन इस बार शिवसेना भी उनके साथ चली गई। अकाली दल का मैंने आपको बताया ही है। तो इनके मन में एक तरह की ये भावना आई है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी अब हमें शायद साथ लेकर चले। छह सदस्य सिर्फ थे संयुक्त ये जनता दल यूनाइटेड के, और उन छह सदस्यों के होते हुए भी उनके उम्मीदवार को मोदी जी ने उपसभापति बनवाया, ये एक बड़ी बात है। तो एक तो विपक्ष, ऐसा विपक्ष जो कि कांग्रेस की तरफ जा सकता था या जाना चाहिए था, उसको उन्होंने वापस अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, एक बात। और दूसरी बात, अपने जो घटक दल थे एनडीए के, उनमें जो एक अविश्वास की भावना आ रही थी, उनमें कहीं एक भरोसा दिलाने की कोशिश की है।
जी, कुछ श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, अपना नाम बताएं और इस विषय पर अपनी राय रखें।
हेलो
जी।
हेलो सर, नमस्कार। जी, पठानकान गज्जू बोल रहा हूँ, किशनौरिया बाड़ में।
जी, अपनी राय रखें।
मेरी राय ये है कि कांग्रेस विपक्ष को एकजुटता क्यों नहीं कर सकती है? क्या कांग्रेस में वरिष्ठ लोग है नहीं क्या? क्योंकि राहुल के बल पर ये विपक्ष एक साथ नहीं हो सकती। कांग्रेस में कई नया कोई नेता लाना पड़ेगा, और विपक्ष को एकजुट होने के कारण ही काम होगा विधानसभा और लोकसभा।
जी
देखिए, कांग्रेस में तो ये बिल्कुल पत्ते उसके साफ हैं। खुद राहुल गांधी ने ये बात कह दी थी कि अगर हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आते हैं सामने और हम सरकार बनाने की स्थिति में प्रतिपक्ष होगा, तो प्रधानमंत्री पद का मैं दावेदार हूँगा। अब आप ये बताइए कि ममता बनर्जी के होते हुए, मायावती के होते हुए कौन इस बात को स्वीकार करेगा। सीपीएम की बहुत कम सदस्य संख्या होगी, लेकिन वहाँ भी देखने वाली बात होगी कि वो कितना जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि एक लुंज पुंज ढंग से एक जिसमें नेतृत्व में एक जुटता आनी चाहिए, वो एक जुटता नहीं आ रही है, फिर एक तरह का ढुलमुलपन दिखाई देता है। क्यों नहीं आपसे बात कर सकते थे राहुल गांधी? राहुल गांधी के लिए खुलेआम एक दिन पहले संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा था कि अगर राहुल गांधी का फ़ोन हमें आता है तो हम उनके बारे में उनके उम्मीदवार को जिताने के बारे में सोचेंगे। उनका उम्मीदवार भी पहले वो उन्होंने अपना उम्मीदवार पवार के शरद पवार के आदमी को बनवाया था, और जब शरद पवार ने देखा कि जीत ही नहीं सकते तो उन्होंने अपना जो वो जो है झूल जो है कहना चाहिए वो इनके गले में डाल दी, और इन्होंने हड़बड़ी में उड़ीसा का ही एक विधायक जो कि इनके यहाँ महामंत्री रहे हैं उनको उन्होंने खड़ा किया, और वो मतलब 100 का आंकड़ा तो पार कर गए, लेकिन और भी ऐसे खुद कांग्रेस में 3 लोग ऐसे थे जो वोट देने के लिए नहीं आए, कोई भी कारण रहे हों। समाजवादी पार्टी के 2 लोग वोट देने नहीं आए, और जो फैन सिटर थे उन जिनको मनाया जा सकता था, जिनमें भरोसा पैदा किया जा सकता था, उसके लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। तो ये कुल मिला के एक जबकि लोकसभा चुनाव निकट आने वाले हैं, निकट ही हैं, और सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तब ये इस तरह का एक तरह का धक्का पहुंचना, एक तरफ का तरह का आघात पहुंचना, ये विपक्ष के लिए तक खास तौर से कांग्रेस के लिए एक बहुत ही अशुभ चीज़ है।
जी, हमारे साथ महाराष्ट्र से एक श्रोता जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
हेलो, मैं अशोक अनुडे से बोल रहा हूँ, कोल्हापुर से।
जी,
तो मेरा सवाल ये क्या कांग्रेस जो हार गई ना संसद में,
जी
संसद में हारने के बाद क्या फिर से 2019 को भी हार सकती है क्या?
जी मधुसूदन जी,
नहीं देखिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से ये हारी है इसने जो है हार खुद मतलब ये जो सीट है ये खुद प्लेट में रखकर एनडीए के उम्मीदवार को दी है, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन हाँ ये बात सही है कि लोकसभा के लिए जमकर प्रयास करेंगे, उससे पहले जो विधानसभा के चुनाव होने हैं खासतौर से मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, उन चुनावों में जैसे कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, वो देखने के बाद ये तय करेंगे कि भाई आगे किस हद तक जा सकते हैं। ममता बनर्जी पर एक अलग मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिमोरलाइज करने के लिए, हालांकि वो शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको अभी आज ही कहा है अमित शाह ने कि हम इनको यहाँ से खदेड़ कर मानेंगे, यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का झंडा आना चाहिए, क्योंकि कम्युनिस्टों को शासन देख लिया, उससे पहले कांग्रेस का शासन यहाँ देख लिया, और अब तृणमूल का कांग्रेस का शासन हमने देख लिया, इसलिए अब हमें चांस मिलना चाहिए। तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई होने वाली है, और वो अपनी लड़ाई को लड़ेंगी, ये देखने वाली बात है कि वहाँ किस तरह से अपनी सीटों को बचाएंगी, या कि अखिल भारतीय स्तर पर घूम घूम कर कांग्रेस के लिए या उनके मिली जुली पार्टियों के लिए प्रचार करेंगी, ये देखने वाली बात होगी।
जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं और इस विषय पर क्या सोचना है आपका बताएं।
हाँ साहब
जी,
मेरा नाम नत्थु सिंह है जी, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ।
जी,
मेरा कहना ये है जी, गठबंधन का इतिहास रहा है कि ये एक दूसरे की टांग खींचते हैं, क्या अब जो गठबंधन बन रहा है ये इससे उभरेगा?
जी, इनका सवाल यह कि जो टांग खींचने की अक्सर मतलब आपसी मतभेद रहते हैं, ये एक दूसरे को कई बार रहते हैं मतभेद, तो इस बार भी क्या ऐसा देखने को मिला? क्योंकि हमने ये भी देखा कि इस बार जो पार्टियां जिनको कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जो पार्टियां एनडीए का हिस्सा नहीं है, यूपीए का हिस्सा नहीं है, आप उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे, आप उनसे बातचीत कर सकते थे। आपने आम आदमी पार्टी का उदाहरण दिया जिसके सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया, और भी जो सांसद हैं उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, तो क्या वजह रह सकती है इसकी कि ये मतभेद कहाँ से उभर रहे हैं? क्या बात है जो कांग्रेस को रोक रही है बाकी इन पार्टियों को अपनी तरफ खींचने से?
एक तो कांग्रेस में अपने अंदर फिर से उठ खड़ा होने की, अपने अंदर नई जान फूंकने की, जैसे कि इंदिरा गांधी उठ खड़ी होती थी, बहुत पुरानी बात हो गई, वो चीज़ इसमें नदारद है। और परिवार से आगे की बात सोचते नहीं। आप देखिए कि उन्होंने एक बार नरसिंह राव को शासन दिया सोनिया गांधी ने, और 10 साल तक मनमोहन सिंह का शासन यहाँ रहा। नरसिंह राव के शासन में जिस तरह की नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ चलाई गईं, उससे देश का एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में कायाकल्प हुआ। दूसरी तरफ 10 साल तक स्थिर सरकार दी, हालांकि जो उसके घटक दल थे वो खींचातानी करते थे और कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे और बदनाम भी हुए, लेकिन मनमोहन सिंह को आप भ्रष्ट नहीं कह सकते कम से कम। तो इनमें एक तो ये कमी है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन तो NDA भी गठबंधन है, इधर इधर गठबंधन नहीं बन रहा है। तो जो भी गठबंधन, अब जो सरकार बनेगी वो भी गठबंधन की सरकार होगी, और अभी जो सरकार चल रही है वो भी गठबंधन की सरकार है। अब जो सरकार बनेगी, ये निश्चित मानिए, अगर वो NDA की गठबंधन की सरकार बनेगी तो NDA के घटक दलों को उन्हें ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा, जो कि मोदी जी की कार्यशैली के काफ़ी खिलाफ जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कांग्रेस किसी तरह जोड़ जाड़ के सरकार बना ली उसने अपनी, तो उसमें बहुत जल्दी ये हो सकता है कि जूतों में दाल बटनी शुरू हो जाए, जो कि होता रहा है हमेशा। तो ये बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट होगा, लेकिन इस ये किधर जा रहा है रास्ता, कहाँ जाएगा, ये हमें विधानसभा के नतीजों से कुछ थोड़ा हमें रोशनी दिखाई देगी।
जी, एक श्रोता हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपना अपनी राय रखें।
हेलो, हाँ सर, मोहम्मद फहीम बोल रहे हैं, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश है।
जी
सर, मैं समझता हूँ जो अभी चुनाव हुए हैं उपसभापति के, तो उसमें कांग्रेस की जो रणनीति थी बहुत ही ज्यादा विफल रही, और ऐसा लगा कि राहुल गांधी देश की नेतृत्व करने की क्षमता उनके नहीं है।
जी, हमारे
मैं समझता हूँ सर, ठीक है सर, और मैं समझता हूँ अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के लिए अगर दावेदार किया जाए तो ये महागठबंधन के लिए बहुत बढ़िया विकल्प रहेगा।
हमारे साथ एक और श्रोता बिहार से जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताएं।
जी, मेरा नाम सतीश कुमार यादव, बिहार मोतिहारी जिला खिंडी गांव से मैं बोल रहा हूँ।
जी
जी, मेरा कहना है कि महागठबंधन मजबूत है और 2019 का चुनाव आराम से जीतेगा, इसमें कोई सोचने की बात है। अभी जो उपसभापति का चुनाव हुआ है, दोनों गठबंधन ने सेंचुरी लगाया, 105 सीटें, 105 वोट उनको मिलेगी।
जी, शुक्रिया। जो अभी बात हो रही थी, जैसे कि ये अभी बात होती है तो फ्लोर मैनेजमेंट पे सवाल उठते हैं कांग्रेस के ऊपर, कि बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद ये फ्लोर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते, क्या इस बार भी ऐसा देखने को मिला और इसका कारण क्या है?
देखिए, कांग्रेस में नेता तो बहुत हैं, और वो नेता सिवाय एक दूसरे की टांग खींचने के और कोई काम नहीं करते, ये कांग्रेस की इस तरह की छवि बन गई। अब देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में ये मान के चला जा रहा था कि ज्योतिरादित्य के बहुत अच्छे चांसेस हैं, लेकिन वहाँ देखिए किन किन लोगों को बिठा दिया गया है, वो सब आपस में शुरू हो गया है वहाँ। तो जो जीती हुई बाजी थी वहाँ, एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी थी, फिर कानून और व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब थी, स्त्रियों पर अत्याचार, किसानों का मामला, ये सारे मुद्दे थे जिससे कि कांग्रेस वहाँ अगर सही नेतृत्व देती और सब उसके पीछे जुटकर खड़े होते तो बहुत अच्छी स्थिति होती। अभी मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस हारी जाएगी वहाँ, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह की लड़ाई और खींचातानी चल रही है और जिसकी रिपोर्ट्स अखबार में आ रही हैं, तो ये कैसे मतलब कांग्रेस आगे चलेगी?
देखिए, गठबंधन को लेके जब बात उठती रही है कि कई बार बहुत सारे जो घटक दल होते हैं उनमें मतभेद होना लाजमी सी बात है, लेकिन जब बात आती है कि जब इस बार बात उठी थी कि कांग्रेस आखिर क्यों नहीं अपने साथ नए सहयोगी जोड़ पाई, जबकि बीजेपी एनडीए के अपने सहयोगियों को तो उन्होंने अपने साथ मजबूत रखा ही, कुछ और को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। तो क्या ये माना जाए कि जो जो एक नेता का एक कद होता है अपना और उसकी एक क्षमता होती है सबको साथ ले चलने की, क्या उस तरह की विपक्ष में पूरा, मतलब कांग्रेस की बात नहीं है जो और भी विपक्षी दल हैं, क्या पूरे विपक्षी दलों में कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है कि जो सबको मना ले कि चलो भाई हमें इस मामले पे साथ चलना है, कोई ऐसा नेता?
देखिए
उसकी कमी के कारण इस तरह से बिखराव देखने को मिल रहा है।
देखिए कांग्रेस की अखिल भारतीयता के खत्म होने के काफ़ी वर्षों के बाद अखिल भारतीयता के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आई है और उसका पूरा ये प्रयास होगा कि इस अखिल भारतीयता के अपने किले को बचाए रखे। वो ये कोशिश जरूर करेगी। ये जो है कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों की उनके राज्यों में लड़ाई है तो वो कांग्रेस के साथ एक सीमा से आगे जाना नहीं चाहते हैं। बीजेपी के साथ, बीजेपी का भी ऐसा है कि कुछ जगह जैसे बीजेपी की उड़ीसा में कम से कम जे बी पटनायक से, क्या नाम है इनका पटनायक से
नवीन पटनायक
से काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी लड़ाई है, एक दूसरे के खिलाफ बहुत लिखा जाता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने उनको फ़ोन किया और वो तैयार हो गए और उन्होंने तर्क क्या गढ़ा कि हम और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक ही परिवार से आते हैं, हमारी रूट्स जयप्रकाश नारायण और उस तरह की जो राजनीति उन्होंने शुरू की उससे निकले हैं तो हमने इसलिए सहयोग किया, तर्क उन्होंने गढ़ लिया। लेकिन जब लड़ाई होगी तो कांग्रेस तो वहाँ नंबर तीन पर जाएगी, लड़ाई तो बीजेडी और बीजेपी के बीच होगी। तो फिर भी इन्होंने उनको जीता, अब वो क्या उस बार क्या कैसे अपना चेहरा बचाएंगे ये आगे देखने वाली बात होगी।
जी हमारे साथ एक श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के मानिकपुर से। जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
हाँ सर, मैं देवेंद्र यादव मानिकपुर से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
जी
सर, मैं आपके इस मतलब कार्यक्रम में कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब उपसभापति चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की मतलब जो हार हुई है उसमें से मुझे लगता है कि कांग्रेस का मतलब उस तरह का प्रयास नहीं था वो करने का, तो शायद यह वो कारण हो सकता है। और फिर बीजेपी का मतलब जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं उनका जो है बीजेपी के ऊपर अब विश्वास कुछ बढ़ रहा है, वो सोचते हैं कि बीजेपी के साथ चलना थोड़ा सा बेटर रहेगा।
जी एक और श्रोता है हमारे साथ उत्तराखंड से। जी अपनी बात रखें।
सर मैं हिमांशु बिनवाल, ग्राम बिनवाल गांव, पोस्ट ऑफिस चौड़ामेता, जिला चंपावत, उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ।
जी
सर, मैं कार्यक्रम पर यह कहना चाहूंगा, जैसा कि देश में महागठबंधन की सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता है, बिहार का हम उदाहरण ले सकते हैं विधानसभा का, वहां भी महागठबंधन हुआ था, तो मैं कहूंगा कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अगर गठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए विपक्ष इतना मजबूत नहीं होगा, क्षेत्रीय पार्टियों से भी कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, फिर सीटों का बंटवारा करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं मानता हूँ मेरे उम्मीद से।
जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इससे पहले जो श्रोता मानिकपुर से थे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय दल हैं खासकर इन्होंने शायद इनका हवाला दिया जो ही अभी इस चुनाव में जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया, कि क्षेत्रीय दलों का जो विश्वास है या उनको लग रहा है कि हमें जो है एनडीए के साथ रहने में, बीजेपी के साथ रहने में उनका फ़ायदा हो सकता है भविष्य में, तो इसलिए थोड़े आकर्षित हुए, क्या ऐसा है?
देखिए ये तो निश्चित रूप से अब ये जो AIDMK के दोनों घटक हैं और आपका ये TRS, ये पार्टियां ऐसी थीं, ये TRS के तो संघीय मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे, ममता बनर्जी जी को जाके माला भी पहनाई थी और जगह भी गए थे, फिर देवगौड़ा के बेटे का जो
शपथ
ग्रहण समारोह हुआ उसमें भी ऐसा लगा कि जैसे सब एक जैसे मिल गए हों, लेकिन वो उन्होंने देखा कि तेलुगु देशम पार्टी जो है वो किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, उसने तो विड्रॉ किया है, तो वहाँ तेलुगु देशम चूँकि के खिलाफ है वो, तो तेलुगु देशम कोई किसी तरह का वो ना ले सके, एक तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया TRS ने भी, और यही रास्ता जो है YSR ने भी अपनाया, उन्होंने एब्सटेन किया। तो ये जो इनके रीजनल वो हैं और वहाँ की जो जो राजनीति है, ज़मीन की राजनीति है, उसको भी इन्हें देखना पड़ता है, तात्कालिक लाभ को भी देखना पड़ता है और भविष्य को भी देखना पड़ता है। अब जैसे ये लोग ये समझ रहे हैं, जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक की तो खैर फिर भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, उनका लोकसभा में जो उपसभापति हैं उन्हीं का बनाए हुए हैं, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं थे। अब ये सोचते हैं कि ये पार्टियां, वो तो बड़ी पार्टी है, अब आगे क्या होगा द्रमुक के करुणानिधि के जाने के बाद वो देख समय बताएगा, लेकिन ये सोचते हैं कि हम किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं, हम कल को अपना ज़्यादा बारगेन कर सकते हैं बीजेपी के साथ कि हमने आपको सहयोग किया था, अब भी आपको हम लोकसभा के चुनावों में सहयोग कर रहे हैं, तो बताइए हमारी पाई क्या हो, हमें कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये सब जो वैसे तो राजनीति सिर्फ अपने जो राजनीतिक पार्टी है उसका जो नेता है उसके हितों के लिए है, कहने को साहब गरीबों के प्रोग्राम चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपनी पार्टी के लिए काम करना ये, और सत्ता किसी भी तरह से सत्ता की में पहुंच जाना, ये उसका अल्टीमेट ध्येय होता है। तो वो वही काम कर रहे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ ज़्यादा संभव है NDA में, तो इसलिए वो उधर की तरफ मुड़े।
जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं। जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
हाँ जी, सर मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ, सरका घाट मंडी हिमाचल प्रदेश से।
जी
जी, आज का ये आपका प्रोग्राम काफी अच्छा चला हुआ, अच्छी चर्चा चली है। सर इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि गठबंधन है कहाँ, ये तो लठबंधन है, कांग्रेस का अन्य दलों के साथ महागठबंधन, गठबंधन ये सिर्फ लठबंधन है, और इस लठबंधन में हर एक दल से हर कोई जो है मॉनिटर बना हुआ है, कोई एक लीडर नहीं है इनका सर्वमान्य। कांग्रेस जो है कांग्रेस अन्य दलों से डरती है, सहयोगी जो इनके दल हैं, सहयोगी दल जो है वो कांग्रेस से डर रहे हैं, मजबूरी में बना हुआ है गठबंधन है, अंतरात्मा से इनका कुछ भी नहीं है ये। और यही हाल रहा तो 2019 में कांग्रेस का तो मेरे को लगता है अस्तित्व भी बिल्कुल हाशिए पर चला जाएगा।
जी, एक और श्रोता हमारे साथ हैं उत्तराखंड से, अपनी बात रखें।
हेलो,
उत्तराखंड से एक श्रोता है। जी जी, अपना नाम बताएं।
हेलो
जी,
हाँ भाई साहब दंडवत प्रणाम, मैं अनिल डोबियाल ग्राम पुरासी पोस्ट बांगात वाया सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ भाई साहब।
जी, अपनी बात रखें।
भाई साहब मैं BBC का बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब अचला शर्मा जी थे BBC हिंदी विभागाध्यक्ष।
जी जी, हम चाहेंगे कि आप आज के विषय पे अपनी बात रखें।
हाँ जी, जो ये NDA के जो मिस्टर हरवंश सिंह जो राज्यसभा के उपसभापति बने साहब, तो इन्होंने तो बनना ही था, और कांग्रेस में साहब नेतृत्व की कमी है, क्योंकि कांग्रेस में जितने भी जो भी दल मिलते हैं सब प्रधानमंत्री के दौर में लगे हुए हैं, तो ऐसे में इनका महागठबंधन 2019 के चुनाव में बिल्कुल फेल होगा, क्योंकि मोदी जो भी काम कर रहे हैं वो देश हित के लिए कर रहे हैं, और ये सारे लोग जितने भी इकट्ठा हो रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो या कोई भी हो, ये सारे प्रधानमंत्री की दौड़ में लगे हुए हैं।
जी, तो जिस तरह से ये हमारे पहले के श्रोता भी कह रहे थे कि कांग्रेस में जो एक नेताओं को लेके, लेकिन इससे अलग हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो हम मैं जानना भी चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये जो 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बड़े राज्यों में, साथ में मिजोरम में भी नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, अगर उसमें उन चुनावों में कांग्रेस को अगर जीत नहीं मिलती है, तो क्या जो अभी वो सोच रही होगी कि हम एक बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे गठबंधन में, क्या वो दावा और कमज़ोर नहीं हो जाएगा?
सफाया ही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो आप हैं नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो स्थितियां आई हैं कि 2 जगह वो छोड़ेंगे, एक राहुल गांधी के लिए मायावती और अखिलेश, एक राहुल गांधी के लिए और एक सोनिया गांधी के लिए, बाकी कोई सीट पर अभी कोई कंसेंसस नहीं बनी है, और वैसे भी नंबर 3 पर है वो पार्टी वहाँ, इन पहले ये दोनों पार्टियां आती हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ होना नहीं जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। अगर मध्य प्रदेश, सिर्फ राजस्थान में इनका पल्ला भारी है इस समय, अगर मध्य प्रदेश को ये नहीं जीत पाए, छत्तीसगढ़ को नहीं जीत पाए, तो इनके मतलब एक तरह से कहिए बैसाखियाँ ही टूट जाएंगी इनकी, और किस आधार पर ये वहाँ जाएंगे राज्य पे शासन करने। हालांकि ये बात भी सही है कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वहाँ मुद्दे दूसरे होते हैं, और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ मुद्दे दूसरे होते हैं, लेकिन हमारे देश में मोदी जी के आने के बाद जो जो चुनाव अभियान है वो एक एक तरह से राष्ट्रपति चुनाव अभियान की तरह बना दिया गया है, तो नेता की बहुत जरूरत होती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुसूदन आनंद जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद और उन श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को इजाजत दें। नमस्कार।